समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीच।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। आज पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिस पर हम सभी कभी भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इससे अधिकांश लोगों के सरोकार जुड़े हैं और ये ऐसे समय की चिंता को सामने रखती है जो भविष्य की होते हुए भी आपके वर्तमान को संचालित करता है। और ये विषय है आम जनता के लिए उपलब्ध पेंशन विकल्प, पेंशन ऑप्शंस अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक। तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। पेंशन को हम वैसे तो सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला लाभ या फिर एक योजना भी कह सकते हैं। नियुक्ति देने वाला कर्मचारी भी अपने जो नियोक्ता है वो अपने कर्मचारियों के भविष्य के लाभ के लिए पेंशन योजनाओं में योगदान करते हैं और फिर इस योगदान को धन के पूल में विभाजित कर दिया जाता है। कभी कभी श्रमिकों की ओर से या कर्मचारियों की ओर से भी निवेश किया जाता है। तो इस तरह की जो सारी बातें हैं हम इस कार्यक्रम में समेटने की कोशिश करेंगे और आप सबकी उपस्थिति भी अनिवार्य है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। उनसे आपका परिचय करा दूं। वित्त और आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और बलवंत जैन जी हमारे साथ रहेंगे इस कार्यक्रम में। आप दोनों विशेषज्ञ मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रिका और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन।
और सबका स्वागत है, श्रोताओं का भी इस कार्यक्रम में। तो अपना कोई भी समस्या, समाधान, सवाल कुछ भी हो हमें फोन करें, हमसे बात करें। यह कार्यक्रम आपका ही है और स्टूडियो की फोन लाइन खुल चुकी हैं। तो पहले नोट करें हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044 और स्टूडियो के नंबर हैं। स्टूडियो का के नंबर डायल करने से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड जरूर लगाएं 0112331444 2371 7106 और 2342 1050। ये नंबर है हमारे। दिस इज अ बाइलिंगुअल प्रोग्राम सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन हिंदी और इंग्लिश। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है तो आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। सबसे पहले शरद जी आपसे ही बात शुरू करते हैं कि बेस्ट रिटायरमेंट पेंशन प्लान क्या हो सकता है, क्योंकि जब हमारा विषय यही बात कह रहा है कि पेंशन ऑप्शंस अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक तो कौन से हैं वो?
देखिए, हम ट्रेडिशनली बात करें तो जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो कामकाज करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं तो उनका प्रोविडेंट फंड कटता है। तो हम सब जानते हैं, खासकर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो उसमें हम सब जानते हैं कि 12% एम्प्लॉयर देता है, 12% एम्प्लॉई देता है। तो और ये कामकाजी लोग तो सब जानते हैं, जो लोग अभी पीएफ से नहीं जुड़े हैं या जो लोग कुछ लोग हैं जो पीएफ को खाली पीएफ समझते हैं पर उनको ये नहीं मालूम होता कि पीएफ के दो हिस्से होते हैं। एक उसमें ईपीएस होता है जिसको हम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कहते हैं और एक प्रोविडेंट फंड होता है। और 12% को अगर हम तोड़कर देखें, दो पोर्शन उसके करें, तो उसमें 8.33% आपका ईपीएस में जाता है जो कि आपको बाद में आपके रिटायरमेंट के वक्त 58 साल के बाद आपको फिर मिलने लगता है और बाकी का आपका प्रोविडेंट फंड में जाता है। तो ये मुझे लगता है सबसे पुरानी और सबसे पॉपुलर तो वही है। बाकी हाल में एनपीएस की हम बात करें, नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो बहुत पॉपुलर हुई है। और जो छोटे
जी, हम इसको विस्तार से आपसे समझेंगे। हमारे श्रोता हैं, पहले इनका फोन ले लेते हैं। जीएस चड्ढा है न्यू दिल्ली से। चड्ढा जी, आप पूछिए अपना सवाल।
हाँ नमस्कार, मैं जीएस चड्ढा बोल रहा हूँ। हमारे जो एक्सपर्ट आए हैं उनको भी नमस्कार।
नमस्कार चड्ढा साहब।
हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं
जी
और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, उनकी पेंशन की क्या योजनाएं हैं? उनको तो मेरे ख्याल में पेंशन मिलती ही नहीं है।
चड्ढा साहब, आपका सोचना दुरुस्त है। जो लोग निजी क्षेत्र में हैं और खासकर वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब उनका रेगुलर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं, यही चड्ढा साहब का मतलब है कहने का, उससे वो नहीं बंधे हुए हैं। तो जो बहुत सारे जब फायदे होते हैं, आप जब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं तो बहुत सारे उसके लाभ भी होते हैं। आप बहुत फ्री रहते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस कम होती हैं। पर एक ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी रहता है कि आपका आपको पेंशन की, क्योंकि प्रोविडेंट फंड नहीं होता जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, तो मुझे लग रहा है चड्डा साहब आपके लिए सबसे अच्छा जो विकल्प निकल के आता है वो है नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, इसका मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया था। तो आप एनपीएस अकाउंट खोलें, और बड़ा आसान होता है खोलना, पीएफआरडीए इसको मॉनिटर करता है और करीब 14 फंड मैनेजर्स को उन्होंने आगे अपॉइंट किया, वही ऑनलाइन भी खुल जाता है, ऑफलाइन भी खुल जाता है, और 1,000 रूपये से कम खुलता है। 18 साल से 70 साल का व्यक्ति इसमें एंट्री ले सकता है, इसको खोल सकता है, और बहुत काम का है क्योंकि आपका आपके फंड्स को, आपके डाले गए पैसे को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करीब 1,80,00,000 लोग आज तक इससे जुड़ चुके हैं, जो कि
हम इसी सवाल को बलवंत जी से भी पूछ रहे हैं। बलवंत जी, आप इस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे श्रोता के लिए, जिन्होंने ये पूछा कि जो अनुबंधित कर्मचारी हैं, जो निजी सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं?
देखिए, ऐसा है कि जैसे साहब ने बताया कि एक एनपीएस का ऑप्शन है, वो एनपीएस का ऑप्शन तो तब है जब आप कमा रहे हैं और उसमें से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा एक और ऑप्शन है कि आज सपोज आप रिटायर हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आपको हर महीने कुछ न कुछ पेंशन मिले, तो आप इंश्योरेंस कंपनी जो है उनसे भी एन्यूटी खरीद सकते हैं कि आपको लमसम पेमेंट करना पड़ेगा और उसके सामने आपको जो आप ऑप्ट करेंगे जिस प्रकार की आपको पेंशन चाहिए वो पेंशन ले सकते हैं। दूसरी एक और स्कीम है वो रिवर्स मॉर्गेज की है, जो लोग रिटायर हो गए हैं वो अपना रिवर्स मॉर्गेज मैं पैसा लेके एक मुश्त इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे सकते हैं। मतलब रिवर्स मॉर्गेज आपका अपना ओनरशिप का जो घर है उसको आप गिरवी रख के एक मुश्त पैसा लेके इंश्योरेंस कंपनी को दे और उनसे आप पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपको आप चाहे जब तक लिमिटेड पीरियड के लिए या आप जिंदा रहे जब तक जैसे आप ऑप्ट करेंगे वैसे आप पेंशन ले सकते हैं।
बलवंत जी, हमारे जो श्रोता हैं वो पूरे भारत में हैं इस समय और दूर दराज के इलाकों में भी रहते हैं, तो क्या कोई ऐसी सुविधा, डाकखाना भी हमें पोस्ट ऑफिस से भी ऐसी कोई सुविधा मिल सकती है जो बहुत दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं उनके लिए?
नहीं, जो पेंशन की जो स्कीम है, मैं जो एन्यूटी की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ही चलाती है, तो वो पोस्ट ऑफिस से तो नहीं मिल सकता, पर आप एनपीएस का अकाउंट तो मेरे हिसाब से पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी खोल सकते हैं।
ठीक, मैं चंद्रिका जी अगर बलवंत जी की बात में जोड़ना चाहूं, जो आपने सवाल पूछा था कि पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में जैसे बलवंत जी ने तो बताया कि आप इंश्योरेंस कंपनी से रिवर्स मॉर्गेज में काम कर सकते हैं, पर एक एमआईपी होता है, एमआईएसपी कुछ लोग बोलते हैं, मंथली इनकम स्कीम बोलते हैं, जिसमें अब आप 15,00,000 रूपये तक ज्वाइंट नेम तक आप निवेश कर सकते हैं और उसमें आपको फिर एक मंथली इनकम। देखिए, पेंशन क्या है, पेंशन एक मंथली भत्ता है जो आपको खासकर जब उस समय जब आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस समय वो पैसा अगर मंथली आने लग जाए उसी को हम पेंशन कहेंगे। अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो मुझे लगता है अगर उसमें आप एक मत पर जो बलवंत जी ने भी बताया और मैंने भी बताया, उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको निवेश करके एक एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। यहां पर एन्युटी नहीं है, यहां पर एक किस्म का डिपॉजिट है, 5 साल के लिए कम से कम होता है, तो उसमें आपको मंथली इनकम आने लग जाता है। तो वो पोस्ट ऑफिस का आपने जिक्र किया तो मुझे उसका भी ध्यान आ गया कि हमारे दर्शकों को बता रहे थे। हमारे जो चड्डा साहब जो कॉलर थे, मुझे हमको आवाज से गेस करना पड़ा है कि रिटायर्ड थे या अभी भी कामकाज करते हैं, पर अच्छी बात है कि हम दोनों एक्सपर्ट्स ने मिलकर उनको प्री रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट दोनों की बात बता दी।
क्योंकि हमारे श्रोता ऐसे भी हैं जो आपने रिटायर्ड की बात कही, तो जरूरी नहीं है कि वो रिटायर्ड ही हों, लेकिन क्योंकि ये पेंशन तो एक ऐसी चीज है ना कि ये भविष्य के लिए है और आपको समय रहते जब आप काम कर रहे हो, जब आप युवा हो उस वक्त आप अपने भविष्य की चिंता करते हो ताकि सम्मान पूर्वक आप बाद में अपना रहन सहन।
बिल्कुल चंद्रिका, और हम तो अब ये सलाह देते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट होने के नाते कि आप जितनी जल्दी, हालांकि जब आप युवाओं को बोलते हैं ना रिटायरमेंट की बात तो थोड़ा सा वो आनाकानी करते हैं, कतरा जाते हैं कि भाई अभी तो यार हमने करियर शुरू किया, अभी आप कहां रिटायरमेंट की बात करें, पर सबसे सही समय आपकी जब आप करियर स्टार्ट करते हैं वही समय सबसे सही समय होता है पेंशन के सोचने का।
जी।
और मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि आपके जितने फाइनेंशियल गोल है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गोल रिटायरमेंट का है, ये नॉन नेगोशिएबल गोल है। आपके बच्चों की शादी पढ़ाई का गोल नेगोशिएबल है, आप सिर्फ क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड मैरिज कर सकते हैं, कोई कम एक्सपेंसिव स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलवा सकते हैं, पर एक बार आप रिटायर हो गए तो आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास जितना पैसा है उससे ही आपको आगे गुजारा करना है, तो उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मेरी राय में आपको आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग पहली इनकम से करनी चाहिए।
दुरुस्त था आपने बिल्कुल कि उस वक्त बहुत बड़े बड़े खर्चे आ जाते हैं जिसको कि युवावस्था में नहीं इंसान समझ पाता है, तो जिस दिन आप कमाना शुरू करें उस दिन से ही भविष्य के लिए बचत शुरू कर दें, ये सबसे सही रास्ता है। हमारे अगले श्रोता है रांची से रमेश हमारे साथ। रमेश जी अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार मैम, नमस्कार दोनों ही एक्सपर्ट्स को मिला।
नमस्कार
मैम जी। मैम मेरा सवाल है कि इस समय मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ और तकरीबन 40,000 के आसपास भी मंथली इनकम है। हालांकि मेरा पीएफ कट रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सेविंग्स के तौर पे किसी और पेंशन स्कीम या पेंशन ऑप्शन में इन्वेस्ट करूँ। तो मैं एक्सपर्ट से समझना चाहूंगा कि मेरे लिए क्या बेटर जो है ऑप्शन होंगे, और अभी मेरी उम्र 25 साल है, तो वो रिटायरमेंट का कैलकुलेट करके अगर सर एक ब्रीफ दें।
जी 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 बलवंत जी, पहले हम आपसे पूछ लेते हैं, आप ये जो हमारे बहुत ही युवा एक श्रोता है इनके लिए क्या
सोचते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है तो जरूरी नहीं कि कोई प्रोडक्ट जिसमें रिटायरमेंट शब्द लिखा हो उसमें ही आप निवेश करें। आपको टैक्स सेविंग करके हिसाब से करनी है तो आपका जैसे प्रोविडेंट फंड है आप एनपीएस में भी डाल सकते हैं, परंतु जैसे बताया कि उम्र 25 साल है और आपके पास में कम से कम 35 साल है ये आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए, तो मेरी राय में आपको आपका जो सालाना इनकम है उसका 12 से 15 गुना टर्म इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए और बाकी जितना पैसा बचा सकते हैं आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना शुरू करिए, क्योंकि आपके पास लंबा गोल है। भले इक्विटी प्रोडक्ट वॉलेटाइल है, बहुत ऊपर नीचे होता है, पर लंबे समय में ये जो वॉलेटिलिटी है वो समतल हो जाती है, इवन आउट हो जाती है। और अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आता है तो आप जैसे इंडेक्स फंड है या जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है या सेंसेक्स फंड है उसमें आप निवेश करें, तो आपको मॉनिटरिंग करने की भी जरूरत नहीं है, रीबैलेंसिंग करने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप स्टॉक एक्सचेंज जो इंडेक्स को चेंज करते हैं तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है वो भी कॉरेस्पॉन्डिंगली उसमें चेंज कर देते हैं, वो इफेक्टिवली मिरर करते हैं उसको इंडेक्स को, और आप इंडेक्स का हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे तो 15-16% का रिटर्न है लंबे समय में।
जी हमारे अगले श्रोता है दिनेश गाजियाबाद से। दिनेश जी पूछिए सवाल।
गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग,
मैं एक्सपर्ट को भी नमस्कार बोलता।
नमस्कार दिनेश
सर, मैं जिला गाजियाबाद मोदनगर तहसील से दिनेश बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं 100% ब्लाइंड हूँ, तो इससे मैं पेंशन के बारे में ये प्रोग्राम आपका सुन रहा था रेडियो, मैं रेडियो सुनता हूँ बाकी मैं देख तो सकता नहीं, तो उसके बारे में मैं जानना चाहता था कि इससे पेंशन की कुछ मिल सकता है नहीं मिल सकता।
मैं जवाब दूं चंद्र
जी? जी
दिनेश जी, हमें पहले तो आपकी हम हिम्मत की दाद देते हैं कि आप पेंशन के बारे में सोच रहे हैं और आप बकायदा रेडियो नियमित रूप से सुनते हैं और आप अपने ज्ञानवर्धन में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है। आपके लिए मैं सलाह दूंगा दिनेश जी कि आप, क्योंकि आपने ये जिक्र नहीं किया कि इनकी इनकम क्या है, आपका आमदनी का जरिया क्या है, क्योंकि पेंशन स्कीम जितनी भी हैं अभी जो हमने बात करी और पहले भी बात करी उसमें देखने वाली बात यह है कि आपके पास कोई आमदनी का जरिया होना चाहिए। अगर आपके पास आमदनी का जरिया है और आप उसमें से कुछ बचाते हैं, उस बचत को ही आप री इन्वेस्ट करके अपना कॉर्पस बनाते हैं, मतलब अपना एक पूंजी जुटा लेते हैं आपके रिटायरमेंट टाइम तक। तो दिनेश जी मेरी आपको सलाह यह है कि आपकी जो भी आमदनी है, मैं एक थंब रूल जो मैं सब लोगों को बताता हूं निजी तौर पे वो मैं आपको बता देता हूं कि मैं ये बताता हूं कि जब भी आपकी आय आए कहीं से भी इनकम आए आप उसका 20% निकाल के एक तरफ रख दीजिए। आप ऐसा मानिए कि आप केवल 80% कमाते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि 80% कमाते हैं साहब गुजारा कैसे करेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ये मानिए कि आपकी सैलरी या आपकी जो भी आय है वो 80% ही है और उस 20% को आप निकाल के एक दूसरे बैंक अकाउंट में रखें और उसको आप निवेश करें। आपके लिए एक इमरजेंसी फंड खड़ा हो जाएगा, आपके लिए एक कॉर्पस खड़ा हो जाएगा, एक पूंजी खड़ी हो जाएगी, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो आपके वित्तीय लक्ष्य हैं, उसमें मकान बनाना है, कोई वाहन लेना है, किसी की एजुकेशन से संबंधित है, कोई भी बड़ा खर्च आपको करना है वो आपको काम आएगा, शादी ब्याह का है वो आपको काम आएगा, अगर आपके पास कोई बड़ी पूंजी होगी नहीं, तो हम देखते हैं जनरली चंद्रिका के लोग कर्ज के नीचे दब जाते हैं क्योंकि उनको बड़ा खर्चा करना है, तो आप तो जैसा पैसा आता है तनख्वाह का वो सारा खर्च हो जाता है, बचत तो होती नहीं है, तो बचत नहीं हो पाती, तो जब उनको बड़ा खर्चा करना होता है तो उधार ले लेते हैं, तो वो फिर लोन के नीचे दब जाते हैं। तो अगर आप ये 20% वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो दिनेश जी आपकी जो भी इनकम है उसमें से आप पहले पैसा बचाएं, और आपकी आयु आपने नहीं बताई पर अभी जिन पेंशन स्कीम्स का हम जिक्र कर रहे थे उसमें एनपीएस है, अटल पेंशन योजना है, और भी ये तो पेंशन के नाम से है, जैसे बलवंत जी ने कहा मैं उनके बात से सहमत हूं कि आप जरूरी नहीं कि पेंशन जिसमें नाम लिखा है उसी पर पेंशन लिखे, क्योंकि आप शुरू में कहीं भी सेविंग करते हैं, आप इक्विटी में करते हैं, आप डेट में करते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, कुछ लोग गोल्ड लेके रख लेते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में करते हैं, कोई मकान लेके रख लेते हैं उसको किराए पर चढ़ा देते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। तो आपको मूल उसमें मंत्र ये है कि आप सेविंग जरूर करें, अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो उसमें से आपका धीरे धीरे करके भले ही कम हो धीरे धीरे आपका एक कॉर्पस बन जाएगा, उसको वही कॉर्पस आपके आगे बुढ़ापे में भी काम आएगा, पेंशन के भी काम आएगा, और आप बड़ा खर्च करना होगा तब भी काम आएगा। जितनी आपने जानकारी दी दिनेश जी उतने में तो मैं यही बता सकता हूं, बाकी जानकारी और होती तो मैं थोड़ा सा और गहराई
में जाता। आपने बहुत खूबसूरत बात ये कही कि एक मुश्त कुछ पैसे की सेविंग जरूर करें, वो आपको आगे लंबे समय में बहुत अच्छे परिणाम देती है। हमारे जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, हम चर्चा कर रहे हैं आम जनता के लिए उपलब्ध पेंशन विकल्प के बारे में। वित्त और आर्थिक विशेषज्ञ बलवंत जैन और शरद कोहली आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप भी कार्यक्रम में शामिल होकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 2331444 2371710 और 2342105। कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सुभाष है गुरुग्राम से। हेलो सुभाष जी।
जी नमस्ते मैं।
नमस्ते।
और आमंत्रित विशेषज्ञ सर को नमस्ते करता हूँ।
नमस्कार सुभाष जी।
जी सर, सर अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था कि ईपीएफ में दो तरह के होते हैं, ईपीएफ और ईपीएफ।
जी
जी सर, तो ईपीएफ में जो पैसे कटते हैं सर एम्प्लॉय से, तो उसके कितने परसेंट ब्याज निर्धारित किए जाते हैं या प्रतिवर्ष उसका निर्धारण होता है, ईपीएफ का पूछ रहा हूँ सर। और दूसरी बात सर, जो ईपीएफ का है उसमें जो पैसे कट जाते हैं तो उसमें कितनी आयु के बाद वो मिलता है, और मंथ पर मंथ मिलता है या टोटल एक मुश्त पैसा मिल जाता है सर, कृपया बताएं। और सर अटल पेंशन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि अटल पेंशन में एक रूपये मंथली है या 12 रूपये पर वर्ष है या कुछ ऐसा है, कुछ प्लीज है थोड़ा अच्छे से बता दीजिएगा प्लीज, धन्यवाद सर।
जी सुभाष जी, बहुत अच्छे आपने सवाल पूछे, बहुत काम के सवाल पूछे। देखिए बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, जो ईपीएस और ईपीएफ के दो हिस्से मैंने आपको बताए थे उन हिस्सों में 8.33 और बाकी का बचा हुआ वो ईपीएफ में जाता है, उस पर ब्याज आपने बिल्कुल ठीक कहा, हर साल उसका निर्धारण होता है, आपको ज्ञात होगा अभी 8% के आसपास है, कभी 8.1 कभी 8.15, उसमें जैसे वित्तीय बजट बनते हैं उस हिसाब से उसका निर्धारण किया जाता है। पहले तो आपकी ये उत्तर, और वो ब्याज कर मुक्त भी होता है, और वो ब्याज आपको रिटायरमेंट के बाद जब आप प्रोविडेंट फंड को आप कम्यूट कराते हैं या आप उसको पेंशन के रूप में लेते हैं तो आपको वो ब्याज के रूप में वो पैसा आपको मिलता रहता है। दूसरा इन्होंने पूछा था कि अटल पेंशन योजना के बारे में, तो अटल पेंशन योजना में आपको बता दो इसमें 18 साल से 40 साल के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, और अगर मैं मेरे पास आंकड़े सही हैं तो अब तक करीब 35,000 करोड़ का इसमें कॉर्पस बन चुका है। आप इसको खुलवा सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी, आप ऑनलाइन भी जाके इसको खोल सकते हैं, और इसमें आपको बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना होता है, कम से कम कंट्रीब्यूशन मुझे याद है 42-45 रूपये का है जो आप देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1450 रूपये के आसपास है जो आप देते हैं, और आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा पेंशन 5,000 रूपये महीने की मिलती है। पर इसकी खूबसूरती क्या है, पेंशन स्कीम तो है, खूबसूरती है कि सरकार भी इसमें आपके साथ कंट्रीब्यूट करती है, सरकारी कंट्रीब्यूशन भी इसमें आता है। सुभाष जी आपको ये मैं जानकारी दे दूं, तो इसलिए अटल पेंशन योजना में इस समय अगर मेरी जानकारी ठीक है तो 5.5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं भारतवर्ष में, हालांकि बहुत छोटी पेंशन इसमें आती है, पर जो समाज के ऐसे वर्ग के हैं जिनकी इनकम कम है या जो लोग अभी बहुत ज्यादा नहीं कमाते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, वो खासकर इसमें जुड़ रहे हैं, और और सरकार का क्योंकि कंट्रीब्यूशन होता है तो इसलिए लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे साथ सरकार भी, आपको बता दो कि 1000 रूपये या आपके बराबर का कंट्रीब्यूशन सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करती है और हर महीने वो पैसा आपके अकाउंट से कटता जाता है। आप एक अकाउंट खुलवा लेते हैं, उससे वो आपको पासबुक दे दी जाती है और उसमें से वो पैसा कटता जाता है और जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाती है तो आपको उसमें से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं सुभाष जी कि आप इस अटल पेंशन योजना का लाभ उठाएंगे और लाभ उठा के आप जल्द से जल्द इसका अकाउंट खुलवाएंगे और बाकी प्रोविडेंट फंड के बारे में भी जानकारी मैं उम्मीद करता हूं कि आपके काम आएगी।
अगले श्रोता है इंदौर से अनिल हमारे साथ। अनिल जी सवाल कीजिए।
मैडम आपको शुभकामनाएं पहले
से। हाँ आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अगला सवाल ये है कि हमारे अभी मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है लेकिन उन्हें पेंशन जो चालू हो जाती है 4 वर्ष पूर्व शुरू हो जाती है तो कर्मचारी इस पेंशन को और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है।
60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और अपनी जो वो पेंशन मिलती है उस जितना हमें, क्योंकि आवाज बहुत कट कट के आ रही थी, हाँ तो जितना उसमें समझ में आया कि जो एकमुश्त राशि है उसको कहीं और इन्वेस्ट करना चाहे तो जैसे पेंशन के वक्त उनको पैसा मिला है अब वो उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
मुझे लग रहा है क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है। बलवंत जी शायद।
हाँ बलवंत जी,
तो ऐसा है कि जैसे मैं भी जो बराबर नहीं सुन पाया पर मुझे लग रहा है कि 60 साल की उम्र में उनको
हाँ।
कुछ पैसा मिला जो वो निवेश करना चाहते
हैं। जी हाँ
तो ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि उनके जो रेगुलर खर्चे के डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए उनके पास कोई सोर्स है। अगर उनके पास रेगुलर कोई पैसा आता है जैसे कोई पेंशन आती है तो जो ये पैसा है वो शायद हो सकता है कि अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहते हो या उनके पास कुछ इतना पैसा है जो अगले 5-7 साल तक चल सकता है तो मेरी राय में वो पैसा इक्विटी के इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं जिसमें आपको मैंने जैसे बताया कि लॉन्ग टर्म में आपका 12-15% रिटर्न मिलेगा। पर मैं सब जो लिसनर है उनको कहना चाहूंगा कि आप इक्विटी में निवेश करने के पहले कम से कम यह जरूर सोचे कि मेरा इन्वेस्टमेंट का टाइम होरिजन 7 साल है। 7 साल से कम है तो आप थोड़ी कम रिस्की प्रोडक्ट है उसमें डाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास बिल्कुल रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है तो RBI के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है जिसपे इंडिविजुअल कितना भी खरीद सकता है और उसमें हर 6 महीने ब्याज मिलता है और हर 6 महीने ब्याज रिवाइज होता है। जो आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के हैं उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उस पर 0.35% ज्यादा मिलता है, मतलब NSCC भी ज्यादा मिलता है और जैसे ही NSC पे रेट बढ़ती है इंटरेस्ट की तभी ये बॉन्ड का भी जो नेक्स्ट साइकिल आता है उसमें भी उनकी भी रेट बढ़ती है, मतलब आपको जो इंटरेस्ट साइकिल से इंसुलेट कर देता है। जैसे ब्याज बढ़ता है तो आपके जो RBI के बॉन्ड है उसमें भी ब्याज आपका बढ़ जाएगा और जैसे आप पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी डाल सकते हैं जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जो सेक्शन 80TT भी है उसके तहत सीनियर सिटीजन है तो साल का 50,000 रूपये का डिडक्शन भी मिलता है फुल टैक्स रिजिम में। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास समय कितना है। अगर समय 5-7 साल के बीच में है तो आप इक्विटी की जो इक्विटी और डेट की हाइब्रिड स्कीम है जिसमें थोड़ा इक्विटी होता है 65% इक्विटी और 35% के आसपास डेट होता है तो उसमें आपकी जो कैपिटल की जो रिस्क है कम हो जाती है और वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है। और 5 साल से कम का समय है तो जैसे मैंने बताया कोई भी डेट प्रोडक्ट में पैसा डाला है।
शरद जी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें ये जोड़ दूं कि अगर वो बुजुर्ग हैं जैसे 65 साल के ऊपर उनकी उम्र है और एक मुश्त उनके पास पैसा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इस उम्र में बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता है ना, तो मतलब जिसमें फ्लोटिंग हो ब्याज या ऐसा हो, अगर वो ये सोचते हैं कि इस पैसे को एक मुश्त में जैसे इन्होंने एनएससी कहा खरीदने के लिए या कुछ भी, कोई ऐसी जगह डालूं जहां पर फिक्स हो मेरा पैसा रहे और मुझे निश्चित उसकी एक आमदनी होती रहे। तो
जी हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं इस बारे में, क्योंकि उसे उस उम्र में आप थोड़ा, मेरा यहां विचार थोड़ा सा फर्क रहेगा, क्योंकि मैं इक्विटी में 60 साल की उम्र में शायद इक्विटी में आप एंटर करेंगे हाँ, तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। हालांकि बलवंत जी ने बोला कि आप लंबे समय के लीजिए, पर अब सवाल तो ये उठता है ना, हालांकि भगवान सबको लंबी आयु दे, पर आप रिटायरमेंट के बाद आप हमेशा ही बहुत ज्यादा लंबा नहीं सोचते हैं, तो उस लिहाज से आपने बिल्कुल ठीक कहा, फिक्स्ड इनकम स्कीम्स में जो सेफ्टी जहां 100% हो आप उसी को देखते हैं। उसमें जो उन्होंने सीनियर सिटीजन स्कीम बताई वो बहुत अच्छी है, पोस्ट ऑफिस का MIP है वो बहुत अच्छा है, कुछ लोग तो आजकल बैंक का FD के इंटरेस्ट रेट्स अच्छे हैं वहां भी रखना प्रेफर करते हैं। तो मुझे लग रहा है आप या कोई ऐसी RBI के फ्लोटिंग बॉन्ड्स की इन्होंने बात करी, वो भी मैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, हालांकि बॉन्ड रेट उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि को सिक्योरिटी पहले आपकी प्रायोरिटी पे चले जाती है और रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा नीचे आ जाता है इस उम्र में, तो मुझे लगता है कि उनका, क्योंकि खून पसीने की सारी उम्र की कमाई होती है, तो आप उससे जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरे एंडोर्स करता हूं और यही सलाह मुझे लगता है अनिल जी को इंदौर में पहुंच भी गई होगी।
जी अगले श्रोता है फरीदाबाद से अनवर हमारे साथ, अनवर जी पूछिए अपना सवाल।
मैडम
नमस्कार,
मैं सर को भी नमस्कार करता हूँ।
नमस्कार
सर, मेरा सवाल ये है, मैं इंद्र बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से।
बोलिए बोलिए।
फरीदाबाद में जो है सेविंग अकाउंट खुला हुआ, तो मैं बराबर बैंक जाता हूँ, तो महाप्रबंधक जी का भी बोलते हैं कि देखिए 350 रुपया कटवा लीजिए।
सवाल पूछ लीजिए आप, सवाल क्या है आपका?
आज सवाल ये है कि अभी मैं कुछ दिन पहले बैंक गया था, तो उन्होंने कहा देखिए 20 रुपया साल में कटेगा और मरने के बाद जो है आपकी वाइफ को 2 लाख रुपया मिलेगा, तो क्या इस तरह का इंश्योरेंस वो लोग बोलते हैं तो हमें करा लेना चाहिए या नहीं करा चाहिए, पूछना।
जी हाँ बिल्कुल करा लेना चाहिए, मुझे लग रहा है बहुत सस्ता इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत है, जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसके अंतर्गत है, 20 रुपए देके अगर आपको कट रहा है तो।
सर चलने से पहले एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ, हमारे किसी महिला श्रोता ने सवाल नहीं पूछा, मैं इंतजार करती रही, आखिर में पूछना चाह रही हूँ कि अगर महिलाएं जो एक गृहिणी है घर चला रही है और उसके पास थोड़ी बहुत अपनी राशि ऐसी है जिसको वो इन्वेस्ट कर सकती है ताकि उसको हर महीने बेहतरी के लिए कुछ मिल सके,
मुझे लग रहा है उसके लिए सबसे अच्छा जो विकल्प है, क्योंकि वहां पर रेगुलर इनकम नहीं है, जब हम NPS की बात करते हैं तो रेगुलर, मुझे लग रहा है उसके लिए सबसे अच्छा, मैं जो मैंने पोस्ट ऑफिस का आपको मंथली इनकम प्लान बताया था
जी।
सबसे अच्छा सुरक्षित और घर के पास पोस्ट ऑफिस सभी के है, महिलाओं के लिए जाना भी आसान है, पासबुक मिल जाती है, मुझे लग रहा है वहां पर वो निवेश करते, उनके लिए मैं इक्विटी या उनके लिए मैं और ज्यादा एडवेंचरस इन्वेस्टमेंट्स की रिकमेंडेशन नहीं देगा, क्योंकि वह रेगुलर आमदनी नहीं,
क्योंकि वो साधारण महिला है, उसको अगर अपना जो घर के खर्च के लिए मिलता है उसमें से अगर वो मेहनत करके कुछ दिमाग लगा के
पिन मनी कहते हैं जी, उसको पिन मनी कहते हैं, वो पिन मनी बचा रहे हैं, तो उसको वो पोस्ट ऑफिस की MIP बिल्कुल सेफ है, सरकार की बैकिंग है और वो बड़े आराम से जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं
जी। तो महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा एक मैंने सवाल पूछा, महिलाओं को धन्यवाद देना चाहिए इसलिए मुझे, लेकिन ये एक वाकई तथ्य भी है ये कि महिलाएं कहां उस पैसे को कैसे रखें,
बिल्कुल, और बहुत ज्यादा
निश्चित रूप से ब्याज मिल सके
जी।
और इसमें कितने तक का ब्याज मिल सकता है?
इसमें आपको अभी जो ब्याज, इसका भी ब्याज साल ब साल वेरी करता है, पर अभी आप लगाइए अंदाजा 7.5% के बीच में है, बुरा नहीं है, क्योंकि महिलाओं की इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, तो इसलिए वो जो उनको बेसिक एग्जेंशन, वो न्यू रिजीम में जाती हैं, तो अब तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं है, तो पहले हम 7.5-7.5 को हम उसमें से 30% टैक्स निकाल देते थे अगर कोई टैक्सेबल व्यक्ति,
तो इसमें कोई कामकाजी महिला हो तो वो भी,
कामकाजी भी लगा सकती है, पर कामकाजी महिला की क्योंकि निरंतर इनकम का स्रोत बना रहता है तो उनके लिए हम दूसरे ऑप्शन की, आपने जो जिक्र किया था तो उसमें गृहिणी शब्द नाम दिया था, तो इसलिए मैंने गृहिणियों को ही दिमाग में रख के किया, मुझे लग रहा है महिलाएं आपको घर बैठ के बहुत धन्यवाद करेंगे, भले ही वो फोन से नहीं जुड़ी हैं पर आपको वो आपका शुक्र कर रही होंगी, और जब इनकम शुरू होगी तो आपको और अच्छा याद करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करूंगी जिन्होंने कार्यक्रम में अपने सवाल पूछे, समय समाप्ति की ओर है और एक बहुत अच्छे पॉइंट पर हम लोग पहुंचे हैं कि महिलाओं के लिए भी बचत की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, वो जो घर की बचत करती हैं उसको इन्वेस्ट करें और उसमें से भी वो पैसा कमाएं, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब समय कह रहा है अनुमति ली जाए, आम जनता के लिए उपलब्ध पेंशन विकल्प विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, आपके सवालों के जवाब दे रहे थे वित्त और आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली और बलवंत जैन, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत आभार हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए, और साथ ही सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद, आपने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आज की चर्चा से निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं की जानकारी तो बढ़ी ही होगी और इसका लाभ आपको मिलेगा। इस जानकारी को और लोगों से साझा करें। निश्चित रूप से मासिक आय जो होती है वो बुढ़ापे में या बुढ़ापे के बाद भी एक बहुत सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि जब तक आप युवा हैं, जब कमाना शुरू कर रहे हैं, तो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा या निश्चित प्रतिशत, जैसा कि शरद जी आपने बताया कि एटलीस्ट 20% आप सेविंग के लिए, अपने भविष्य के लिए सिक्योर जरूर करें। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं, इजाजत दीजिए, नमस्कार।